सत्संग जी प्रेम से कहना है। सत्संग अभी आप मधुर वचन यथार्थ वचन श्रवण कर रहे थे, गीत कविता व्याख्यान के रूप में जो बोल महापुरुष संत जनों ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया है प्रेरणा देने के लिए कि हमने किस मार्ग पर चलना है, कैसी मन की अवस्था में रहकर इस जीवन के सफ़र को तय करना है, हमने इस भरे संसार में किन पहलुओं को विशेषताएं देनी हैं और उसी अनुसार हमने अपने आप को ढालते चले जाना है। ये प्रेरणादायक वचन, इनको यथार्थ वचन कहा गया है और वाकई ही इससे प्रेरित होकर जो इस ओर मुड़ जाता है, इस ओर बढ़ जाता है, उसने ही अपना उद्धार किया है, उसी ने ही अपने जीवन को एक सुंदर रूप दिया है। प्रेरणाएं तो नाना प्रकार की मिलती हैं हमें कदम कदम के ऊपर। आज वो भी हमें लोग देखने को मिलते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि एक हाथ में विस्फोटक सामग्री ले लो और जाके उड़ा दो। ऐसी भी प्रेरणाएं दी जा रही हैं, किसी को लूट लो, किसी को मार लो, वो भी एक मोटिवेशन, वो भी एक उस रूप में भी प्रेरित किया जाता है। लेकिन महापुरुष भक्त जन प्रेरित करते हैं जीवन को संवारने के लिए, संसार को श्रृंगार देने के लिए, इस लोक को संवारने के लिए, परलोक सुहेला करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए, मन को सुंदर भावों से युक्त करने के लिए। तो ये प्रेरित होते हैं जो भी महापुरुषों की वाणी से, महापुरुषों के वचनों से, तो वो वास्तविकता में एक लाभ का सौदा कर लेते हैं। और दूसरे प्रकार से प्रेरणा देने वाले और प्रेरित होने वाले, विपरीत रास्ते पे चलने वाले, उन्होंने दोनों जहानों की बाजी हारी है हमेशा। वो कलंकित हुए हैं और उनको कहीं पर भी ठौर ठाउं नहीं मिली है। तो महापुरुष भक्तजन वो यही एक प्रेरणाएं हमें देते आ रहे हैं कि एक एक श्वास हमारा जीवन का वो इस निराकार के एहसास में बीते, इसके रंग में रंग कर बीते, हम दिव्य गुणों से युक्त होकर जिएं। ये चार दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, ये लगातार बताया जा रहा है, एहसास कराया जा रहा है। ये चार दिनों की हमारी ज़िंदगी है, ये तो कहीं ना कहीं इस शारीरिक यात्रा की संपन्नता हो जानी है। तो क्यों ना ये जो चार दिन मालिक ने बख्शे हैं, इन चार दिनों को हम इस कदर जी लें कि हम अपने लिए भी हमें शोभा प्राप्त हो और हम औरों के लिए भी वरदान बन जाएं। इस कदर हमारा ये जीवन का सफ़र, एक एक पल, एक एक सांस इस ढंग से ये बीते, एक हमारे हृदय में हमेशा प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो, दया का भाव हो। आज भी 23 जून को कंपैशन डे मनाया जा रहा है, कल भी बड़े आर्टिकल्स अखबार में आए। जैसे आप जानते हैं कि यूएनओ की तरफ से भी या वर्ल्ड बॉडीज़ की तरफ से भी, या फिर प्रचलित हो चुके हैं कहीं फादर डे, कहीं मदर्स डे, कहीं पर सिस्टर्स डे, कहीं पर कोई डे, तो और भी अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड बॉडीज़ की तरफ से भी कई कई ऐसे दिन निश्चित किए जाते हैं। एनर्जी सेविंग डे कहीं मनाया जाता है, जब उस दिन को चार चार घंटे लाइट ऑफ की जाती है कि एनर्जी सेव करनी है। तो आज का दिन भी कंपैशन डे ये डिक्लेयर हुआ है कि कंपैशन दया, कि दया का भाव हमारे मन में हो, और जैसे दास अक्सर वो पंक्ति पढ़ता है कि धर्म का रूप ही दया वाला है, कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि दया का भाव कंपैशन, अगर बाइबल में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं, वो भी भरे पड़ी हैं शिक्षाएं बेस्ड ऑन लव टॉलरेंस कंपैशन। एक कंपैशन, एक ऐसी दया का भाव, करुणा का भाव, ये वाकई ही भक्त हृदय में ही होता है। जो वाकई हृदय में इस प्रभु का वास हो चुका है, जो संतो गुरु की वाणी को हृदय में स्थान दे चुका है, जिसने अपने मन में ये ज्योत जगा ली है, तो वाकई ही उसके जीवन में ये करुणा और दया का भाव होता है। और इसीलिए कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संत का हृदय नवनीत के समान, एक माखन के समान होता है, एक नरम सा। और ये भी मिसाल कई दफ़ा दी गई कि जब ये पंक्ति का इस्तेमाल हुआ कि संत हृदय नवनीत समाना, तो तब ये भी साथ ही जिक्र लगातार हो रहा है कि एक माखन की जो टुकड़ी होती है, वो माखन की टिकिया, उसको तो आँच दो तो वो पिघलती है। जिस टिकिया को आँच देंगे वही पिघलेगी। लेकिन संत का हृदय बताया कि आँच किसी और को लगती है और पिघल ये जाते हैं, सेक किसी और को लगता है, इनके मन में दर्द हो जाता है, कांटा किसी और को चुभता है, पीड़ा ये महसूस करते हैं। तो इसीलिए ये संत हृदय नवनीत समाना, कि संत का हृदय ऐसा होता है, एक करुणा, एक कंपैशन, एक दया का भाव। दो और कंपैशन का विपरीत कठोरता, कटुरता, एक कठोरता ही कठोरता है हृदयों में, ऐसी कठोरता, ऐसी क्रूरता। अभी भी जो उत्तराखंड में कितना भयानक नुकसान हुआ है, कितना जान माल का नुकसान हुआ है, अभी तो अनुमान ही नहीं लग पा रहा है। जब गुजरात में भी अर्थक्वेक आया तो दास को भुज के इलाके में, अंजार के इलाके में जाने का मौका मिला, जहाँ पर मिशन की तरफ से एक नई नगरी बसाई गई, जो गांव का गांव बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका था। तो उस सिलसिले में जब वो निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो दास को वहाँ जाने का मौका मिला, और जहाँ पर वो सारे मोहल्ले, सारा शहर भुज का, जो अर्थक्वेक के कारण बिल्कुल ही खंडर बन चुका था, तो आर्मी की गाड़ी आगे लगी, पुलिस की गाड़ी, और गली में से गुजरे, उस दोनों तरफ मकान गिरे हुए और बिल्कुल साइलेंट तरीके से निकल रहे थे, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं। और ये पहले ही उन्होंने वॉर्न किया था कि कोई हॉर्न नहीं बजेगा, कोई आवाज़ नहीं। उसके पीछे कारण कि बिल्डिंगें दोनों तरफ इतनी शिथिल हो चुकी थी कि साउंड वेव्स के कारण भी थड़कन होती है, थिरकता है कुछ ज़मीन का हिस्सा, या कुछ टिका हुआ है वैसे ही एक बरीकी से, तो सब नीचे आकर गिर जाएगा, और हो सकता है कि हमारी गाड़ियों के ऊपर ही मलबा ना गिर जाए। तो इस तरह से वो भी एक देखा, और वहाँ पर भी बता रहे थे कि ये मकान गिरे हुए हैं, हमने आंकड़े तो बता दिए हैं कि इतनी जाने गई हैं, लेकिन ये जो दाएं बाएं दोनों तरफ आप देख रहे हो, अभी ये मलबे उठाने हैं, पता नहीं इसके अंदर कौन कौन दबा हुआ है। तो इसी प्रकार से अभी भी जो इतना भयानक रूप हम देख रहे हैं कि जो ऐसा पानी का, जल का बहाव, बादल फटे और इस कदर लगातार की बरसात के कारण कितना कितना एक जानी माली नुकसान हुआ है, और वो दृश्य हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई वो क्रूरता और कठोरता, वो भी हम देख रहे हैं, वो खबरें आप पढ़ रहे हैं कि कितना लोग लोभ लालच में आए हुए वहाँ पर। अभी आज ही अखबार में पढ़ा कि हेमकुंड साहब के पास गोविंद घाट की तरफ से कितने दिनों से भूखे लोग, कहीं से जब आर्मी वालों ने निकाला और वो आगे गए कहीं बचते बचाते, तो वहाँ पर भूख लगी, एक ढाबे सा, ढाबा सा नज़र आया, और एक छोटी सी कटोरी चावल की वो दे रहा था, कहते 500 रुपया दो। इसी प्रकार से गाड़ियां टैक्सी चल रही हैं, वो भी वहां पर पूरा पूरा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जानते हैं कि एक मजबूरी में है, जितना मर्जी एक्सप्लॉयट कर लो। तो एक तरफ कंपैशन की बात हो रही है, दया करुणा की भाव का जिक्र हो रहा है, और दूसरी तरफ ऐसी निर्दयता और क्रूरता कि ऐसी स्थिति में भी बख्शने को तैयार नहीं है कोई, पूरा पूरा निचोड़ने में लगे रहते हैं, पूरा पूरा उस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करता है। हर बार ऐसा होता है, उसी गुजरात के अर्थक्वेक में जब दास ने जिक्र किया, और जब वहाँ से सड़क से गुजर रहे थे तो लॉरीज की लॉरीज से टेंट्स उतर रहे थे, कैंप्स उतर रहे थे कि वो टेंट्स लगने हैं, तो वहाँ पर बताने वाले ऑफिसर ने बताया, कहने लगा कि ये टेंट्स तो आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से भी एयरलिफ्ट होकर आ रहे हैं, और ये करोड़ों की वैल्यू वाले ये यहाँ पर लैंड हो रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इनमें से कितने इस्तेमाल होने हैं और कितने बार बार से ही बिक जाने हैं। तो इस तरह से लोग कैसे कैसी एक निर्दयता और एक लोभ लालच का प्रमाण ये लगातार दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो संतों महापुरुषों की, जो लगातार इंसानों को हिदायत और ये एक निर्देश रहे हैं कि इंसान एक क्रूरता और कठोरता नहीं, एक दया का भाव, एक करुणा का भाव, इसी को ही विशेषता मिली है हरि की दरगाह में। इस मालिक की दरगाह में इन्हीं भावों को ही हमेशा से विशेषता ये प्राप्त हुई है। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों ने ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी हैं, ऐसे ऐसे पहलुओं को अहमियत हर इंसान को देने के लिए एक प्रेरित किया है कि पहलू तो हर प्रकार के हैं, जैसे संसार में अगर कांटे हैं तो फूल भी हैं, लेकिन ये बताया कि कांटों की बनिस्बत एक फूलों की अहमियत है। एक फूल सजा देते हैं बाग को, एक फूलों की सुगंधी, एक फूलों की कोमलता और उनका सुंदर रूप, जैसे कहते हैं कि फ्लावर्स आर फॉर ऑल ओकेजन्स इवन द मोस्ट सॉरफुल, कि एक फूलों की ऐसी अहमियत कि ये खुशी के मौके पे भी, और एक कहीं पर अफसोस का मौका होता है तब भी हम फूल भेंट करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है अस्पताल में तब भी हम फूल लेकर उसके पास चले जाते हैं, और कहीं पर एक किसी का जिस्म चला गया है, जान चली गई है, और हम कहते हैं कि ये उसकी एक जो उसको ले जाया जा रहा है और वो बॉडी पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी हम फूलों का रीथ रखते हैं या फूल रखते हैं, फूलों का हार उस जिस्म के ऊपर डाल देते हैं। तो फ्लावर्स आर फॉर ऑल ओकेजन इवन द मोस्ट सॉरफुल। तो इस प्रकार से एक ऐसे जीवन को अहमियत देने के लिए महापुरुषों ने प्रेरित किया है कि कांटे नहीं, हमने फूल बनना है, एक सजाना है, संवारना है इस जहान को। हमने कांटों का रूप नहीं बनना है, हमने अंधकार का रूप नहीं बनना है, हमने उजाले का रूप बनना है, हमने निर्दयता का प्रमाण नहीं देना, हमने एक करुणा और दया के भाव से युक्त होना है, हमने एक अहम और अभिमान नहीं करना, हमने विनम्रता का प्रमाण देना है, हमने संकीर्णता नहीं, हमने विशालता के प्रमाण देने हैं। तो इस प्रकार से ये तमाम ऐसे पहलुओं हैं जिनको महापुरुष संत जनों ने, गुरु पीर पैगंबरों वलियों ने जिन भावों से युक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणाएं दी हैं, और वाकई ही जो जो भी इस रास्ते पे चल निकला, जिस जिसने भी इन भावों को अपना लिया, जिन्होंने अपने हृदय में इन भावों को स्थान दे दिया और इन्हीं पहलुओं को अहमियत दी कदम कदम के ऊपर, उन उनका ही नाम रोशन हुआ और वही धरती के लिए वरदान माने गए हैं और बाकी अभिशाप माने गए हैं। एक अभिशाप होता है, एक वरदान होता है। तो ये भक्त ही होते हैं जो वरदान बने हैं, और बाकी लोग जो पाप प्रवृत्ति वाले, जो साकत प्रवृत्ति वाले हैं, जो कांटों के रूप हैं, जो जलने और जलाने में यकीन रखते हैं, तो वो एक अभिशाप माने गए हैं। तो इसीलिए दोनों प्रकार के मार्ग हैं। इसीलिए हम महापुरुषों की वाणी में भी पढ़ते हैं कि इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और, कि इनका मार्ग ही भिन्न है, इनका रास्ता ही अलग है। ये रास्ता अलग यानी कि भावों में अंतर है, एक दृष्टि में अंतर है, एक फीलिंग्स में अंतर है। ये अंतर है जो बता रहा है कि इनका मार्ग और है और उनका मार्ग और है। जैसे वो मिसाल दी कि वहाँ पर सिचुएशन को देकर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर का भी नुकसान हो रहा है फिर भी पहले दूसरे को बचाने के लिए निकले हुए हैं, वो भी प्रमाण है, वो भी फूलों के सुंदर रूप हैं। तो कहने का भाव कि ऐसे ही अपने महापुरुष भक्तजन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जब सुनामी हुई, तो उस वक्त भी दास सुनामी के बाद 3 महीने के बाद वहाँ अंडमान जाने का मौका मिला, और वहाँ पर भी महापुरुष बता रहे थे कि अपने ही महापुरुषों को जब निर्देश मिला सेवा दल के जवानों को कि आप राहत के लिए निकल पड़ो, तो सेवा दल के जवानों के अपने घरों में भी कुछ दरारें आ गई और घर में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन वो भाग खड़े हुए औरों की मदद करने के लिए। तो इस प्रकार से एक सुंदर रूप, ऐसे योगदान देने के लिए संसार को, जिसके कारण ये धरती बची हुई है, वरना तो ये धरती कब की मिट चुकी होती। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर ये संत प्रवृत्ति ना होती, जैसे जल का ना होना, अगर ऐसी स्थिति हो कि जल हो ही नहीं और केवल अग्नि हो, तो हम समझ सकते हैं कि क्या बचेगा। अगर जल हो ही ना, केवल और केवल आग हो, तो कुछ नहीं बचता है। तो इसी प्रकार से ये भक्त भी, संत प्रवृत्ति भी, ये जल का रूप होती हैं जो इस फैलती हुई अग्नि को थामने का काम करते हैं। अगर बीच में ये जल ना हो, ये भी मिसाल दास ने कई बरस पहले दी कि आज से शायद 25 साल पहले जब 1985 में जब कनाडा जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर वैंकूवर के इलाके में और अल्बर्टा के इलाके में जहाँ कैलगरी, एडमंटन इत्यादि शहर हैं, तो उस इलाके में पिछले 7-8 दिनों से लगातार आग लगी हुई थी। जैसे अभी भी 3 साल पहले आपने देखा ये सामने वाले पहाड़ी के ऊपर आग लगी हुई थी, उत्तराखंड के कई इलाकों में आग लगी हुई जंगलों में, तो वहाँ पर भी आग लगी हुई थी। तो एक तरफ से चलती आ रही थी आग, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स लगातार चल रही थी और आग आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एक फिर ऐसा स्थान आ गया जहाँ आग रुक गई, और वो थी एक लेक, एक झील बीच में आ गई। इधर भी पेड़ थे जो आग की लपेट में आ चुके थे, और झील के दूसरी तरफ भी वो वृक्ष और पेड़ थे। अगर ये बीच में झील ना होती तो ये आगे भी इसी रफ्तार से आग ने चलते चले जाना था, लेकिन वहाँ पर एक बचाव हो गया। तो इसी प्रकार से अगर ये सज्जन और संत प्रवृत्ति ना हो तो कोई जलने से बचा नहीं सकता है। तो इसीलिए संतों की, सज्जनों की महत्ता इस संसार में हमेशा से रही है, और यही प्रार्थनाएं की जाती है कि ये सज्जनता, ये एक साधुत्व, ये हमेशा कायम रहे, ये कभी अलोप ना हो। इसीलिए गुरुमुखों को, महापुरुषों को भी बार बार सुचेत किया जाता है कि संसार तो पहले ही ऐसा है, अगर आप भी संसार जैसे बन गए तो फिर बचेगा क्या। इसलिए आपने कम से कम अपने उस रूप सुंदर को बिगड़ने नहीं देना है, आपने वो दया का भाव छोड़ना नहीं है, आपने विनम्रता को छोड़ना नहीं है, आपने विशालता को छोड़ना नहीं है, आपने सहनशीलता को छोड़ना नहीं है, आपने सब्र और संतोष का दामन थामे रखना है। तो इसीलिए ये बार बार संतों को, महात्माओं को, भक्तों भी को भी कहा जाता है कि हमने अवश्य अपनी उस अवस्था को कायम रखना है। वो चंदन का वृक्ष जैसे शीतल होता है तो वैसे ही हमारी शीतलता भी बनी रहे। एक चंदन के पेड़ के साथ अगर जहरीला सांप लिपट जाए तो वो चंदन का पेड़ जहरीला नहीं बन जाता है, वो सांप वाला काम नहीं करने लग पड़ता है, वो अपनी जगह पर अपनी वो जो उसका धर्म है, जो गुण है, उसको वो कायम रखता है। वो शीतलता और महक वो देता रहता है वो चंदन का वृक्ष। इसी प्रकार से एक महापुरुष भक्त जन सज्जनों को भी बार बार ये सुचेत किया जाता है, एहसास कराया जाता है कि हमने अवश्य अपनी इस अवस्था को बदलने नहीं देना है, कि हमने हमेशा इन गुणों से युक्त रहना है और इन्हीं गुणों की अहमियत ये हमेशा इस हरि की दरगाह में रही है और इन्हीं गुणों से युक्त होने वालों का ही सत्कार और उन्हीं का नाम ये रोशन पहले भी रहा है, हर युग में रहा है और आज भी इन्हीं गुणों के कारण ही ये अहमियत जीवन की ये बनी रहेगी। तो अवसाद संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने हमेशा ही इसी तरफ इन कदमों को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणाएं दी हैं, वाणी का भी इस्तेमाल किया है, एग्जाम्पल्स भी दी हैं, जो इतिहास के पन्नों से भी कोट किया है कि फलां समय फलां युग में फलां नाम के महात्मा हुए हैं और उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को ढाला जिसके कारण चारों तरफ का वातावरण महक उठा। तो इसी प्रकार से वो वाणी का भी इस्तेमाल होता है, एक किस्से कहानियाँ और एग्जाम्पल्स का भी इस्तेमाल होता है। केवल भाव ये होता है कि इस मार्ग पर चल निकलें, इसी के कारण ये धरती सजी और सवरी रह सकती है, वरना तो बिगाड़ करने वाले तो कोई कसर नहीं उठा रहे हैं। तो अवसाद संगत, कहने का भाव इतना ही है कि महापुरुष संत जनों ने जो जो भी आज भी इस सत्संग में वचनों का इस्तेमाल किया है वो इसी तरफ प्रेरित किया है, इस मूल की तरफ प्रेरित किया है, इस निराकार की तरफ प्रेरित किया है, क्योंकि यही वो बीज है जिसके कारण ये तमाम गुण जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए मूल का होना तो ज़रूरी है, लाजिम है। अगर इस मूल की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं तो बाकी, अगर बीज ही नहीं तो वृक्ष फिर कहाँ और डाली कहाँ, फिर फल कहाँ, फूल कहाँ, उनकी कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए मूल का होना ज़रूरी है। तो इसलिए मूल को प्राथमिकता देते हैं, विशेषता देते हैं कि इस मूल की तरफ ही तुम अपने कदम बढ़ाओ, इस मूल के साथ जुड़ जाओ, इस निराकार के साथ जुड़ जाओ, इस हरि के साथ जुड़ जाओ। और इसके साथ अगर जुड़े रहते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़े रहते हैं तो फिर ये भाव भी सुंदर बने रहते हैं, फिर चाल भी सुंदर बनी रहती है। और अगर इस संग नाता टूट जाता है तो चाल भी बिगड़ जाती है, फिर ख्याल भी बदल जाते हैं, फिर दृष्टि भी मलिन हो जाती है, फिर सब बिगाड़ ही बिगाड़ हो जाते हैं। अगर इससे नाता तोड़ लेते हैं और इससे जुड़े रहते हैं तो नेकियां ही नेकियां, एक अच्छाइयां ही अच्छाइयां, वो हमारे मन में भावों के रूप में उत्पन्न होती रहती हैं और उन्हीं को हम क्रियात्मक रूप दे देते हैं, अमल का रूप देते हैं, व्यवहारिक रूप उसका दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लोग देखने वाले कहते हैं कि कितना सुंदर व्यवहार करता है ये, कितना साफ सुथरा व्यवहार करता है ये, कितने सुंदर ढंग से पेश आता है ये, इसकी वाणी में तो रस ही रस निकलता है। इस प्रकार से लोग फिर ऐसा कहते हैं क्योंकि उसके पास वो ऐसा खजाना आ गया है, वो मूल के साथ जुड़ने के कारण, एक हरि के साथ जुड़ने के कारण, इसको आधार बनाने के कारण और इसको आठों पहर नतमस्तक होने के कारण, जिसकी विशेषता है, जैसे अभी भी बच्चे भी अवतार वाणी के शब्दों का उच्चारण कर रहे थे कि मन बुद्धि ते अकलों बारे तैनू लख प्रणाम करा, कि मन बुद्धि अकल के पार हे निराकार परमात्मा तुझे परमात्मा तुझे लाखों ही प्रणाम। हमेशा नतमस्तक रहूं तेरे आगे, तेरा एहसास कदम कदम पर रहे, तुझ संग नाता इस मन का हमेशा ये जुड़ा रहे, तेरी धुन में ही रहूं हमेशा, वो भी मिसाल लैला मजनू के। बाबा गुरबचन सिंह जी अक्सर ये मिसाल दिया करते थे कि लैला जा रही थी और आगे एक नमाज पढ़ रहा था इंसान, और उसके सामने से वो लैला गुज़र गई और वो अपनी जबी को जो धरती के साथ लगा रहा था, सिजदा कर रहा था, सामने से गुज़री, एकदम से वो परेशान हो गया और एकदम से लैला को बुरा भला कहने लगा कि अंधी हुई है, नहीं देखती, मैं यहाँ पर इबादत कर रहा हूँ, सामने से तू गुज़र गई है, तुझे इतनी भी अकल नहीं है। तो आगे से लैला कहती है कि तू सिजदा कर रहा था, इबादत कर रहा था, किसकी? कहने लगा खुदा की, इस अल्लाह की। तो आगे से लैला कहने लगी कि मैं इस सामने से गुज़र गई क्योंकि मेरा पूरे का पूरा ध्यान मजनू की तरफ लगा हुआ था और मुझे आप नज़र ही नहीं आए, और कमाल है कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे, आपको मैं नज़र आ गई, मैं मुझे तो आप नहीं नज़र आए क्योंकि मैं लैला की धुन में थी, वो तो फिर भी इंसान है, तुम तो अल्लाह की प्रस्तुति कर रहे थे और तुम्हें लैला नज़र आ गई और तुम कितने परेशान हो गए, बुरा भला मुझे कहने लग पड़े। तो कहने का भाव कि भक्त भी इस कदर इसकी धुन में रहते हैं, इस मालिक की धुन में रहते हैं और इसीलिए इसी को ही कदम कदम पर विशेषता देते हैं। सात संगत जी धन्य।